हेलो दोस्तों, आप डॉक्टर अपूर्व शुक्ला के साथ KTU नो द अननोन नाम के चैनल पे हैं। एपिसोड की इस श्रृंखला में हम कुछ सफल सलाह, प्रामाणिक तथ्यों और अंग्रेजी में ज्ञान के इच्छुक लोगों के लिए शोध के साथ साथ हिंदी में मन को बड़े दिल से छूने के लिए शोध करेंगे। आज हम इस बारे में बात करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। स्पष्टीकरण, नए CJI के रूप में जस्टिस NV रमना। हाल ही में न्यायमूर्ति नथलपति वेंकट रमना ने 24 अप्रैल 2021 शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति NV रमना ने अंग्रेजी में शपथ ली, जहां उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अन्य गणमान्य लोगों के साथ राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में उपस्थित थे। वह CJI शरद अरविंद बोबडे के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं, जो शुक्रवार को पद से सेवानिवृत्त हुए। जस्टिस रमना की बात करें तो वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। कृपया ध्यान दें कि वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से पहले हैं, न कि आंध्र प्रदेश राज्य से। न्यायमूर्ति के सुब्बा राव के रूप में जो 9वें CJI थे, राज्य से थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि AP हाईकोर्ट जस्टिस राव का पेरेंट हाईकोर्ट नहीं था। पेरेंट हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट है जहां कोई व्यक्ति जज बनता है। जब मार्च 1948 में जस्टिस राव जज बने तो न तो AP हाईकोर्ट और न ही AP राज्य का अस्तित्व था। यहां हम भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 124, भारत के संविधान में CJI को नियुक्त करने की किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 124(1) केवल इंगित करता है कि भारत का एक मुख्य न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार संवैधानिक प्रावधान के अभाव में CJI को नियुक्त करने की प्रक्रिया सम्मेलन पर निर्भर करती है। सम्मेलन, निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करता है, एक अभ्यास जो शक्ति से वरिष्ठता पर आधारित है। केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री की सिफारिश को आगे बढ़ाते हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इस प्रकार 65 साल की उम्र में एक CJI के सेवानिवृत्त होने के बाद देश के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अधिक वर्षों तक सेवा देने वाले वरिष्ठतम न्यायाधीश CJI के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां दोनों न्यायाधीशों की समान वरिष्ठता है, अन्य कारक जैसे दोनों के बीच उच्च न्यायालय में तुलनात्मक रूप से अधिक अनुभव है, या उनमें से किसी को सीधे बार से नामित किया गया है, या जिसने पहले शपथ ली थी, वह खेल में आता है। उदाहरण के लिए अगस्त 2017 में जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस जास्ती चेलमेश्वर दोनों को उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में शपथ दिलाई गई, लेकिन जस्टिस चेलमेश्वर के 4 महीने छोटे होने के बावजूद जस्टिस मिश्रा का CJI के रूप में अभिषेक किया गया। दोनों को सर्वोच्च न्यायालय में 10 अक्टूबर 2011 को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था। लेकिन एक साथ नियुक्तियों में जो कोई भी शपथ लेता है उससे वरिष्ठता की दी जाती है। चूंकि जस्टिस चेलमेश्वर ने जस्टिस मिश्रा के बाद शपथ ली थी, इसलिए बाद वाले उनसे वरिष्ठ हो गए। ज्ञापन प्रक्रिया, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, तो MOP, पहले जैसा कहा गया है कि CJI की नियुक्ति SC के वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में होनी चाहिए जो पद संभालने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री MOP के अनुसार CJI के निवर्तमान समय की सिफारिश उचित समय पर करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगर CJI के पद पर रहने के लिए CJI को वरिष्ठतम न्यायाधीश की फिटनेस पर कोई भी संदेह है तो वह कॉलेजियम से परामर्श कर सकता है। कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। MOP पढ़ता है। MOP ऐसी स्थिति के बारे में चुप है जब सरकार CJI की सिफारिश से असहमत है। इसके अलावा केंद्र सरकार के CJI की नियुक्ति में केंद्र सरकार की कोई निर्दिष्ट भूमिका नहीं है, सिवाय केंद्रीय कानून मंत्री के PM को भेजने से पहले लगातार CJI से सिफारिश की मांग करने के लिए। KTU दी अननोन नाम के चैनल पे एपिसोड की इस श्रृंखला में हम कुछ सफल